ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shivam.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவ மஹிமா பிரசன்ட் பாய் சுவாமி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பகவான் ஆசுதோஷ் கி அசீம் அஹேது கி கிருபா கே சாத் भगवान शिव की महिमा के माध्यम से आप अपनी महिमा सुन रहे हैं। मुझे स्मरण हो रहा है, एक बार पूज्यपाद ब्रह्मलीन गुरुदेव के चरणों में किसी ने प्रश्न किया। वो ग्रंथावलोकन निरंतर उनका चलता रहता था। तो महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज आप क्या देख रहे हैं। बोले, देख रहा हूं इस पुस्तक में मेरी क्या क्या तारीफ लिखी हुई है। तो ये जो महिमा आप सुन रहे हैं, ये किसी दूसरे की महिमा नहीं है, ये तो आपकी अपनी महिमा है। आपकी महिमा इतनी अनंत असीम है कि जिसका कोई पारावार नहीं है, आदि अंत मध्य नहीं है। परंतु ऐसे अपनी महिमामय गरिमामय स्वरूप को न जानने के कारण हमारी स्थिति ऐसी हो रही है कि एक भिखारी हाथ में भिक्षा पात्र लेकर सबके आगे पैसा मांग रहा है। उसे ये मालूम नहीं कि जिस स्थान पर बैठ करके वो भीख मांग रहा है, उसी के नीचे अपार धन गड़ा हुआ है। उसे इस बात का मालूम नहीं है। मालूम न होने के कारण वो कंगाल बनकर सबके आगे भीख मांग रहा है। सो स्थिति हम सब लोगों की अपने स्वरूप को न जानने के कारण, अपनी वास्तविकता को न पहचानने के कारण अल्प सुख के लिए, अल्प शांति के लिए हम संसार में विषयों का आश्रय लेकर उनके लिए दीनहीन बने हुए गिड़गिड़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, ये शिव कोई और नहीं है, ये तो आपका निज स्वरूप आत्मा है। और इस आत्मा के ही अनेक रूप ये धारण कर लेता है। अनंत नाम है इनके, अनंत गुण है, अनंत लीलाएं हैं, और अनंत कार्यों के कारण सकल सृष्टि का जब खेल खेलते हैं, तब इनके नाम अनेक हो जाते हैं, रूप अनेक हो जाते हैं। और जब सकल प्रपंच से निष्क्रिय होकर, निष्कलंक निर्द्वंद होकर जब स्वरूपस्थ होते हैं, तो यह परात्पर परब्रह्म परमेश्वर सदा शिव नित्य शाश्वत शुद्ध है। निर्गुण भी वही है और सर्गुण भी वही है। सगुण और सगुण रूप में जब लीला करते हैं, तो अनंत नामों में कहीं कृष्ण बनकर, कहीं राधा बनकर, श्रीमद् देवी भागवत और महाभागवत पर ऐसा प्रसंग आता है कि स्वयं भगवान सृष्टि के खेल खेलने के लिए एक बार भगवती आदि शक्ति पराम्बा शिवा के संग भगवान कैलाश पर विराजमान थे। माँ भगवती के चरणों का दर्शन करते हुए भगवती की ओर भगवान ने, शिव ने दृष्टि लगाकर देखा। पार्वती का सौंदर्य, शिवा सौंदर्य कहते हैं, शिवा का अर्थात नित्या प्रकृति स्वरूपणी भगवती का, क्यों जब रूप का दर्शन किया तो भगवान शिव इतने आनंदित हुए कि स्वयं शिव को इस प्रकृति के रूप में देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई और इस इच्छा के कारण भगवान शिव स्वयं पार्वती से कहते हैं, देवी मेरे अंदर एक इच्छा उत्पन्न हो रही है, वो उसे तुम पूरा करोगे। मेरे एक अंदर एक अभिलाषा जागृत हुई है, इच्छा जागृत हुई है, उसे तुम पूरा करोगे। भगवती शिवा कहती परमेश्वर अवश्य मैं, ऐसी कौन सी इच्छा जागृत हुई है कि जिसे आप मुझसे पूरा करने के लिए कह रहे हैं। कितना अच्छा होता कि भगवान शिव कहते हैं मैं स्वयं तुम्हारे रूप में प्रकट हो जाता, स्त्री बन जाता और तुम स्वयं पुरुष के रूप में मेरे रूप में प्रकट होती। माँ पार्वती कहती हैं प्रभु निश्चित ही मैं आपकी ये इच्छा पूर्ण करूंगी। भगवान ने इसी इच्छा इसी लीला को पूर्ण करने के लिए कल्पांत में जाकर लीला परिवर्तन किया। परिवर्तन में स्वयं भगवती शिवा काली कृष्ण के रूप में प्रकट हुई और भगवान शिव स्वयं राधा के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव के सहस्त्रों नामों में एक नाम सखी भी है, सखी नाम शिव का है। शायद आप लोगों को ये नाम पहली बार ही सुनने को मिला हो। भगवान शिव को कहते हैं सखी, सखी नाम हनुमान जी का भी है और सखी नाम भगवान शिव का भी है। अर्थात भगवान स्वयं सखी बनकर राधा बनकर के प्रकट हुए, इसीलिए राधा गोरी है और भगवान श्री कृष्ण श्याम है, श्याम रंग की श्यामा काली है, गौर वर्ण के और कोई नहीं, ये भगवान शिव है। तो लीला क्रम में, सृष्टि के इस क्रम में न जाने कितनी बार पुरुष स्त्री के रूप में प्रणीत हो गए और स्त्रियां पुरुष के रूप में प्रणीत हो गई। सृष्टि के इस अनंता अनंत खेल में, लीला क्रम में रूपांतरित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। वैसे ही सदा शिव भी जब सृष्टि की लीला खेल खेलते हैं तो अनंत रूपों में परिवर्तित होते ही रहते हैं, रूपांतरित। इसलिए किसी एक नाम और किसी एक रूप विशेष में भगवान शिव से किसी एक विशेष नाम और विशेष रूप को नहीं समझना चाहिए। शिव कहने पर हमारे सामने ध्यान क्या आता है? हमें शिव कहते ही स्मरण होता है कि जिनके सिर पर गंगा जी हैं और भाल पर चंद्रमा है, ललाट पर चंदन का आलेपन है, गले में विषधर धारण किए हुए हैं, कानों में सुंदर कुंडल धारण किए हुए गौर वर्ण के शिव के रूप का स्मरण होने लगता है। पर शिव नाम किसी रूप विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, शिव नाम केवल रूप विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। शिव कहते हैं कल्याण को, शिव कहते हैं शुभ को, शिव कहते हैं मंगल को और शिव कहते हैं आत्मा को। तो इसलिए शिव कहते हैं उस ज्योतिर्मय को, ज्योति को, जिस ज्योति की कोई जात नहीं है, कोई लिंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई शरीर नहीं है। अर्थात ज्योति की कोई जात नहीं होती, कोई आकार नहीं, लिंग नहीं होता और न ही उसके लिए कोई रूप है, वो तो एक दिव्य ज्योति है। तो सबके हृदयों में चेतन के रूप में, ज्ञान के रूप में जगमगाती हुई अखंड आत्म ज्योति के रूप में यही जो विद्यमान है वही शिव है। कण कण में सृष्टि के, जन जन के मन मन में जो व्याप्त परम चेतना है, ज्ञान स्वरूप, वही नित्य शाश्वत सनातन शिव है। इसीलिए कहा गया है शिव ब्रह्मा भी है, शिव विष्णु भी है और शिव महेश्वर भी है। शिव नाम महेश्वर का भी है। अर्थात सृष्टि के कार्य के खेल खेलने के लिए ये त्रिगुण शक्ति के रूप में, जो तीनों कार्य को करने के लिए त्रिगुणात्म रूप धारण किए हुए हैं, वही सनातन सदा शिव है। शिव महेश्वर को भी कहते हैं। महेश्वर माने सृष्टि का प्रलयंकर देव, वो महेश्वर है जिसे हम शंकर कहते हैं। अर्थात शिव विष्णु के रूप में भी है, जो निरतिशय अत्यंत परम व्याप्त है, जिसका जिसकी महिमा आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है, वही शिव है। और ऐसे शिव में जैसे पानी के भीतर जल का बुदबुदा दिखाई पड़ता है, वायु के संयोग से समुद्र में उठने वाले समुद्र की लहर दिखाई पड़ती है, जल में जल का बुदबुदा दिखाई पड़ता है, और वायु के निकल जाने पर वो बुदबुदा अदृश्य हो जाता है, वो लहर अदृश्य हो जाती है, तो इसका मतलब वो गई कहाँ? वो गई कहीं नहीं, वो पहले भी समुद्र में थी, समुद्र ही थी और समुद्र ही है। वो तो केवल बीच में प्रतीत हो रही थी वायु के संयोग से। इसी प्रकार जो जगत प्रकृति के संयोग से, चेतन के, ज्ञान के, शिव के और शक्ति के संयोग से प्रतीत होने वाला ये जगत और जगत के रूप में दिखने वाला हमारा ये शरीर, अर्थात प्रकृति से ये कोई अलग तो नहीं है। इसीलिए मेधा ऋषि ने, जब मेधा ऋषि से पूछा गया, महाराज वो प्रकृति क्या, वो शक्ति क्या है, तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, याशा जगत, याशा नित्याशा जगत मूर्तिया। अर्थात जो जगत मूर्ति के रूप में, जगत के रूप में जो दिखाई पड़ रही है, वही नित्या है, वही सनातनी है। अर्थात ये नित्य रूप में दिखाई पड़ने वाला जगत, ये शरीर भगवती शिवा के रूप में है। अर्थात शिव के ने जिस शक्ति को अपने आप से स्वीकार कर लिया, वही शक्ति सनातन है, शिवा है, प्रकृति है, और प्रकृति से ये प्रतीत होने वाला संपूर्ण जगत है। यदि प्रकृति के इस आवरण को हटा करके देखें, तो सर्वत्र केवल केवल एकमात्र जो परम शिव है, अर्थात जिसे परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, वही नित्य है, सनातन है, और वही हम सबों की आत्मा है। आत्मा तम गिरिजामति, वही आत्मा है। इसलिए आत्मा राम के रूप में, जिसका कोई लिंग नहीं, आत्मा के रूप में विद्यमान जो तत्व है, उसी को शिव कहा गया है, नारायण। इसलिए ऐसे भगवान शिव जब सगुण साकार रूप धारण करते हैं, तो वो महेश्वर कहलाते हैं, महेश कहलाते हैं, शंकर कहलाते हैं, और शंकर बन करके वो भक्तों के लिए अति दयालु, अति कृपालु देव हैं, बहुत कृपा करने वाले हैं, और स्वयं इतने कृपालु हैं कि भला उनकी उपासना करके, स्वयं शिव की, हरि भी जिनकी नित्य उपासना करते हैं, ब्रह्मा भी जिनकी नित्य वंदना करते हैं, भगवान श्री हरि ने तो भगवान शिव की ऐसी उपासना की कि आप महिमन स्तोत्र में रोज शायद पाठ करते होंगे, हरि स्ते सहस्रम कमल मलिमादाय पदयो यदर्को नेतस्मिन् निजहरमुदं नेत्र कमलम। भगवान श्री हरि भगवान शिव की आराधना करते हैं। कैसे आराधना करते हैं? बोले सहस्र नामार्चन करते हैं, एक नाम नहीं, सहस्रों नाम, हजार नाम, और हजार नाम भगवान शिव के लेते हुए एक एक नाम के साथ भगवान के श्री चरणों में एक एक कमल अर्पित करते हैं। कमल चढ़ाते हैं। सहस्त्र नामार्चन कहते हैं कि सहस्त्र नाम से विष्णु सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, दुर्गा सहस्त्र नाम है, गणेश सहस्त्र नाम है, ये सहस्त्र नाम से अर्चन करना चाहिए। बोले इसमें संकल्प होता है कि हम हजार बार सिर्फ शिव के नाम लेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं लेंगे, और हजार नाम से ही पुष्प चढ़ाएंगे। देखो नारायण भगवान को फूल चढ़ाना, तो ज्यादा चढ़ाएंगे न कम चढ़ाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि यदि ज्यादा हो गए तो उन फूलों का कोई उपयोग नहीं, कम हो गए तो भी वो नाम पूरे नहीं होंगे। इसलिए अर्चन में जितनी आवश्यकता हो उतनी समिधा जरूर लेनी चाहिए। बोले उससे अधिक फूल तोड़ के डालेंगे तो भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि फूल का जीवन भी तभी सफल है जब वो भगवान के श्री चरणों में चढ़ जाए, भगवान पंचमस्तक पर चढ़ जाए, भगवान को समर्पित हो जाए, तो वो फूल का जीवन भी सार्थक है। यदि वो फूल नहीं चढ़ता है तो व्यर्थ उसके जीवन को नष्ट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। बहुत से लोगों को देखते हैं फूल सुंदर खिले हुए हैं, फूल को देखकर सबको अच्छा लगता है, तुरंत उसे तोड़ लेते हैं बिना किसी प्रयोजन के। पुष्प को तोड़ना भी अपराध है, उसे बिना उस जो जहाँ है प्रकृति में जो जहाँ खिला है वो उस वहीं पर उसकी सुंदरता को वहीं से निहारो। उसकी सुंदरता पर तो आपका देखने का तो आपको अधिकार है, पर उस फूल को उसके स्थान से हटा करके उस पेड़ से तोड़ करके उसके जीवन को नष्ट करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कभी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। भगवान की पूजा करने के लिए हम बैठे तो पूजा का विधान भी है कि जब पूजा करने बैठ गए तो बैठ गए, बीच बीच में उठना नहीं चाहिए, बीच बीच में बोलना नहीं चाहिए, बोलो भी नहीं उठो भी नहीं। यदि उठ जाओगे और बोल लोगे तो भी पूजा खंडित मानी जाती है। नारायण आसन पर बैठ पूजा से पहले सारा सामान पूजा का इकट्ठा कर लें, और जब पूजा करने के लिए बैठ जाएं तो फिर पूजा करें। पूजा पूर्ण होने के बाद ही उठना चाहिए, जब तक कोई ऐसा परम आवश्यक कारण न हो तब तक बीच में कभी ऐसा उठना नहीं चाहिए। ये पूजा का नियम है। भगवान श्री हरि भगवान शिव के सहस्त्र नामार्चन करने लगे, नामों से एक एक नाम लेकर कमल चढ़ाने लगे। देखा इसमें एक कमल, एक हजार में एक कमल कम हो गया, 999 कमल हैं, एक कमल कम है, उठ नहीं सकते और किसी को आवाज देके ये कह भी नहीं सकते कि एक कमल कम पड़ गया ले आओ। और हम लोग होते हैं तो बीच में जब तक 10 बार आवाज नहीं लगाएं, बहुत माताओं की आवाज आदत होती है, पूजा करने के लिए बैठी रहेंगी और बीच बीच में नौकर को बाई को सबको आवाज देती रहेंगी, ऐसा कर लो वैसा कर लो, है ना, वैसा कुछ नहीं करना। एक मैं मद्रास में किसी के घर गई, वो माँ घर की पूजा करती थी और पूजा पूजा करते करते राम 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 करते, ए रामू देख दूध आ गया, दूध इधर ले ले, राम 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 राम, अरे दरवाजा खोल दे, कपड़े की मशीन बंद कर दे, राम 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 राम, वो बीच में इस तरह करते थे। ऐसी पूजा करने का कोई मतलब नहीं, तो कपड़ा तो दिमाग में कपड़े धोने को जा रहा है और दूध में जा रहा है और राम 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 कर रहे हैं। तो कहने का ये एक केवल अभ्यास जनक बात है, उसमें प्रेम और रस वाली कोई बात नहीं है। देखो नारायण पूजा का मतलब होता है भगवान की पूजा करना चाहिए। पूजा भक्ति है ऐसा मत किसका है? व्यास जी का है। पूजा अनुरागश्च, पूजा में अनुराग होना ये भगवान की भक्ति है, ये वेद व्यास का मत है। बोले पूजा और सेवा भज सेव्यम, भगवान की सेवा करना ये भगवान की भक्ति है ऐसा मत किसका है, बोले सांडिल्य ऋषि आदि का है। परंतु भगवान की पूजा सेवा है ये मत महर्षि व्यास का है। पर पूजा कैसे होनी चाहिए, बोले पूजा तो हृदय से होनी चाहिए, पूजा मानस होती है, पूजा हमेशा मन से की जाती है, अर्चना हमेशा बाहर से की जाती है। बाहर से जो भी आप कर रहे हैं ये शिवार्चन कर रहे हैं, भगवती का अर्चन कर रहे हैं, गणेश का अर्चन कर रहे हैं, सब सामान सुविधा को लेकर के पूजा तो मानस होती है नारायण। जब तक पूजा नहीं होगी तब तक अर्चना तुम कैसे करो, पूजा करनी चाहिए, बोले मन से करनी चाहिए। पहले पूजा करने के लिए देवो भूत्वा देवो यजेत, देवता का पूजन करने के लिए स्वयं अपने आप को देव तुल्य बनाए। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है अंग न्यास, करण न्यास, हृदय न्यास, ये सब न्यास कराते हैं कि ताकि आप संपूर्ण देवत्वमय बन जाए, आपका अंग अंग समस्त देवताओं के वास से ये आपका शरीर स्वयं देव तुल्य बन जाए, तभी तो देवता का पूजा करने का अधिकार आपको प्राप्त होगा। हम भूल गए ये सब परंपराएं। तो इस प्रकार भगवान का अर्चन कर रहे थे तो करते करते एक कमल बीच में कम पड़ गया, न तो किसी को आवाज दे सकते हैं, न उठकर जाकर ला सकते हैं। तब हरि ने क्या सोचा कि माँ मेरे कमलों मेरे नेत्रों को हमेशा कहा करती थी, राम तुम्हारे नेत्र कमल जैसे, कमल नयन कमलों के समान तुम्हारे सुंदर नेत्र हैं। तो इसलिए इन्हें शायद ये नाम माने इसीलिए रखा हो। भगवान श्री हरि ने अपने आंख से निकालकर कमल के स्थान पर जैसे ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए देने के लिए तैयार हुए तो भगवान सदाशिव साक्षात रूप से प्रकट हुए महेश्वर, और उन्होंने भगवान शिव की ऐसी प्रसन्नता प्राप्त हुई, इतनी प्रसन्नता प्राप्त हुई कि भगवान शिव प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट करते हैं, जिसे भगवान श्री हरि ने सुदर्शन चक्र अपने हाथ में धारण किया और जिससे दुर्जनों का संहार किया, भक्तों की रक्षा की, अपने भक्तों के अनुग्रह करने के लिए कृपा करने के लिए भगवान शिव ने भगवान श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। अर्थात भगवान शिव की पूजा करके भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्राप्त कर लिया, जिस चक्र के प्रभाव से वो सृष्टि में बड़े बड़े मधु और कैटव जैसे महान असुरों का वध करते हैं। जब जब भक्तों पर विपत्ति पड़ती है तब तब सुदर्शन चक्र से भगवान निग्रह करते हैं और भक्तों पर कृपा, दुष्टों का निग्रह करते हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं भगवान श्री हरि। तो भगवान शिव की आराधना का फल विष्णु को प्राप्त हुआ, भगवान शिव की आराधना का फल कल मैंने आपको कहा था रावण को प्राप्त हुआ। अर्थात जिसने चाहे वो असुर हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो ऋषि हो, चाहे वो गंधर्व हो, जो कोई भी शिव की शरण में गए, ये भूत नायक ऐसे हैं कि जो भी भूतेश्वर भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान ये नहीं देखते हैं ये कौन है, भगवान ये देखते हैं ये मेरे पास आया है। जो उनकी शरण में आ गया, शिव शरण जिसने ग्रहण कर लिया, भगवान भूले से भी जिसने भगवान के नाम को अपनी जिह्वा में ले आया, शिव पुराण में ऐसी कथा आती है कि एक बार कुछ डाकू थे, उनका कार्य था लूटपाट करना। दो दल थे, ये जंगल में रहते मार्ग को देखते थे। जब दूर से किसी को आते हुए पेड़ में चढ़कर देखते थे तो वो अपने साथियों को सावधान करने के लिए कहते थे, हर हर। और जब नजदीक पहुंच जाते थे, हर हर, इसका अर्थ था कि बस आ रहा है, हर लो। और जब बिल्कुल पास में आकर पकड़ लो इनको कहना होता था तो वो कहते थे, प्रहर प्रहर, इन पर प्रहार करो प्रहार करो, हर हर, प्रहर प्रहर, यही निरंतर वो उच्चारण किया करते थे। हर हर, प्रहर प्रहर, यही शब्द बोलते थे। तो जैसे ही उनका अंत समय आया, यमदूत उनके पास आए।